कश्मीरी। निमाय पंडित ने उनको किस तरह से हराया, इस लीला का वर्णन आज यहां करने का प्रयास करेंगे। भगवान की लीलाएं बहुत मधुर रहती हैं। कभी कभी भगवान की लीलाओं को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम समझ नहीं पाते हैं कि भगवान ने कोई भी चीज क्यों की, कब किया और किस व्यक्ति के साथ किया। लेकिन अगर हम श्रद्धा से इन लीलाओं का श्रवण करेंगे तो हमारे चित्त का मार्जन होगा और भगवत प्रेम का उदय हमारे हृदय में हो जाएगा। बचपन में चैतन्य महाप्रभु, जो कि निमाय के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने ऐसे सुंदर सुंदर लीलाएं करके सारे नवद्वीप के निवासियों का हृदय आकृष्ट कर लिया। और जब वे बाल्यावस्था में पहुंचे, पौगंड अवस्था में पहुंचे, तो बहुत शरारत करते थे, बहुत सताते थे लोगों को, लेकिन फिर भी सभी लोग उनसे बहुत प्रेम करते थे। जिस तरह से कि कृष्ण भगवान को सारे वृंदावन के निवासी प्रेम किया करते थे। और जैसे उनकी उम्र बढ़ गई, वैसे वैसे अपने पढ़ाई में, अध्ययन में बहुत ध्यान देने लगे और बड़े विद्वान हो गए। जगह जगह नवद्वीप में जाकर लोगों को चुनौती देते थे और वाद विवाद में उनको हरा देते थे। इस तरह की लीलाएं निमाय पंडित किया करते थे। अब नवद्वीप का शहर उस समय बहुत प्रसिद्ध था शिक्षण के लिए। दूर दूर से ब्राह्मण वहां शास्त्रों का अध्ययन करने आया करते थे। व्याकरण की शिक्षा, न्याय की शिक्षा, अलंकार शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अलग अलग जो भाग विभाजन है ज्ञान के, उनको प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण लोग आया करते थे। और चैतन्य भागवत में श्रील वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि नवद्वीप में उस समय करीब 500 वर्ष पूर्व कोटि कोटि बड़े बड़े विद्वान रहा करते थे, जिनके कोटि कोटि शिष्य थे। और हरेक विद्वान इनमें से बड़ा स्वतंत्र था, अभिमानी था, बहुत घमंड था उनको अपने शिक्षण का, अपने ज्ञान का। और इस तरह से एक दूसरे से तर्क करते रहते और किसी की परवाह नहीं करते। यहां तक कि आदि कवि ब्रह्मा जी अगर सामने आते शायद उनकी भी परवाह नहीं करते। ब्रह्मा जी इस सृष्टि में सबसे पहले ब्राह्मण है, सबसे पहले विद्वान। इसलिए श्रीमद् भागवत में भी बताया गया है कि यह ज्ञान जो है पहले आदि कवि ब्रह्मा जी को दिया गया था। और इस तरह से ये इतने घमंड में थे कि केवल अपने विद्वत्ता का प्रदर्शन करने के लिए वो इधर उधर जाया करते थे। अलग अलग तरह के विद्वान थे जिनके नाम थे भट्टाचार्य, किसी का नाम था मिश्र, किसी का नाम चक्रवर्ती, किसी का नाम आचार्य। और इनमें से हर एक व्यक्ति किसी न किसी शास्त्र के ऊपर बड़ा प्रवीण था, अधिकारी व्यक्ति था। तो अलग अलग तरह के शास्त्र हैं और ये अलग अलग शास्त्रों के ऊपर अलग अलग विद्वान इस पे निपुणता प्राप्त कर लेते थे। कुंती देवी श्रीमद् भागवत में बताती हैं, जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभिर एधमान मदह पुमान नैवार्हति अभिधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरा। बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हैं कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण के सामने, जब कृष्ण भगवान हस्तिनापुर को छोड़कर द्वारका जाने वाले थे। तो कुंती महारानी ने कहा कि हे कृष्ण, आपके चरण कमलों के प्रति आकृष्ट होना कोई साधारण बात नहीं है। केवल वही व्यक्ति निस्सहाय ढंग से भक्ति भावना से आपके नाम को पुकार सकता है जो अकिंचन है, जिसके पास संसार का कोई भी वस्तु नहीं है, जो भौतिक संसार के भोग के लिए कोई भी योजना नहीं बना रहा है। केवल ऐसा व्यक्ति आपके शुद्ध नामों का वर्णन कर सकता है, लेकिन जिन व्यक्तियों के पास ऊंचा जन्म है, जन्म बहुत धन है, ऐश्वर्य श्रुत अर्थात बहुत शिक्षण होने के नाते बहुत ज्ञान है, या तो फिर श्री बहुत सौंदर्य है शारीरिक, तो ऐसे लोग एधमान मदह पुमान वो बिल्कुल उन्मत्त हो जाते हैं। उनको इतना घमंड आ जाता है कि प्राय जैसे कोई व्यक्ति मदिरा पान करके नशे में आ जाता है तो उनका घमंड भी इस तरह का नशा हो जाता है। और प्रत्यक्ष हम ये संसार में भी देखते हैं, कई बार जो लोग ज्यादा धनी होते हैं, ज्यादा सुंदर होते हैं, हरे कृष्ण, ज्यादा शिक्षित होते हैं, बड़े बड़े ऊंचे कुल के होते हैं, उनको घमंड रहता है। तो उसी तरह से ये जो नवद्वीप के बड़े बड़े ब्राह्मण थे, आचार्य चक्रवर्ती मिश्र भट्टाचार्य, इनके हृदय में बड़ा घमंड था क्योंकि इनको इतना ज्ञान था, इतने बड़े बड़े विद्वान थे ये लोग। तो इस तरह से आपस में हमेशा तर्क करते रहते थे, वाद विवाद करते रहते थे। शास्त्र में बताया जाता है कि ऐसे तर्क और वाद विवाद से भगवान कभी नहीं प्राप्त हो सकते हैं। तर्को अप्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्ना नसा ऋषि यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायम महाजनो येन गतः सपन्था। कि ऐसे लोग होते हैं जो बार बार तर्क करते रहते हैं, लेकिन तर्क से किसी भी बात की सिद्धि नहीं हो सकती। कितना भी आप तर्क करते रहे, जीवन के अंत तक दो व्यक्ति तर्क करते रहे, लेकिन किसी बात को सिद्ध करना यह संसार में बहुत कठिन है। इसे तर्क करना ये कोई फायदे की बात नहीं है, क्योंकि श्रुतयो विभिन्ना, अगर आप शास्त्रों के आधार से भी तर्क करेंगे फिर भी इसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि शास्त्र जो है कितने सारे हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं। अगर आप शास्त्र पढ़ने बैठेंगे तो जीवन भर अगर आप 24 घंटे भी शास्त्रों का अध्ययन करें फिर भी आप शास्त्रों को समझ नहीं पाएंगे, पढ़ने का समय भी नहीं मिलेगा, और जब तक 10 शास्त्र पढ़ लिए पहले शास्त्र को 9 शास्त्र को भूल जाएंगे। तो इसलिए ऐसे लोग जो तर्क करते हैं आपस में, नसा ऋषि यस्य मतम न भिन्नम, वो समझते हैं कि जब तक हमारा मत दूसरों से भिन्न नहीं हुआ तब तक हम कोई बड़े विद्वान नहीं बने। इसलिए हर एक व्यक्ति अपना भिन्न मत प्रस्तुत करने का प्रयास करता था नवद्वीप में, लेकिन वो नहीं जानते थे कि भगवान प्राप्त को प्राप्त करने के लिए उनके शुद्ध भक्त का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान श्री कृष्ण विश्राम करते हैं। तुमार हृदय सदा गोविंद विश्राम, वैष्णव के बारे में बताया गया है कि श्री गोविंद हमेशा वैष्णव के हृदय में विराजे हुए होते हैं। तो इस तरह से निमय पंडित ने इन ब्राह्मणों का गर्व देखा और सोचा कि इनके अहंकार का को भंग करना चाहिए, चूर चूर कर देना चाहिए। तो इतने निपुणता से निमय पंडित ने कार्य किया, जो भी उन्हें मिलता उनको वाद विवाद में हरा देते, और इस तरह से हरा देते कि उनका गौरव भी बना रहता लेकिन उनको पता चल जाता कि मैं निमय पंडित के सामने कुछ भी नहीं हूं, और सभी लोग समझने लगते कि निमय पंडित जैसा कोई पंडित सारे नवद्वीप में, बल्कि सारे देश भर में, बल्कि सारे पृथ्वी भर में नहीं हो सकता है। क्योंकि बहुत ही बचपन की अवस्था से ही निमय पंडित ने अपने विद्वत्ता का प्रदर्शन किया था और सभी लोग घबराते थे निमय पंडित से, दूर भाग जाते थे, क्योंकि निमय पंडित जब भी सामने आते थे उनको चुनौती देते थे और ये अलग अलग पंडित हमेशा हार जाते थे, इसलिए सोचते थे कि निमय पंडित से दूर रहना ही अच्छा है। तो इस तरह से सभी लोग निमय पंडित को अपने हृदय में सम्मान करते थे, लेकिन क्योंकि निमय पंडित उनको इस तरह से एक मीठे तरह से हरा देते थे, इसलिए कोई भी ब्राह्मण, कोई भी शिक्षित अध्यापक उनके प्रति द्वेष भावना नहीं रखता था। निमय पंडित आखिर भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए जिन व्यक्ति के संग में वो आते थे, भले वो उनको तर्क में हरा भी देते थे, लेकिन वो व्यक्ति निमय पंडित को इतना प्रेम करने लगता था कि बस कि निमय पंडित के अलावा किसी और को जानता ही नहीं था वो। तो इस तरह से नवद्वीप के सारे निवासी निमय पंडित को बहुत प्रेम करने लगे। एक बार ऐसे हुआ कि नवद्वीप में एक बहुत बड़े पंडित आए जिनका नाम था केशव काश्मीरी, कश्मीर से आए थे। कश्मीर में भी एक ब्राह्मणों की बहुत पुरानी पद्धति है, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण भी वहां रहा करते थे। खैर आजकल परिस्थिति तो वैसी नहीं रही, लेकिन फिर भी वहां से बहुत पंडित आकर अलग अलग जगह देश भर में घूमते थे। तो ये केशव काश्मीरी की विशेषता ये थी कि उनको सरस्वती देवी का एक वरदान मिला था। सरस्वती देवी तो शिक्षा की देवी हैं जैसा आप जानते हैं, और ये केशव काश्मीरी उनके बिल्कुल एकांत उपासक थे, बहुत अच्छे उनके उपासक थे। दिन भर दिन रात सरस्वती देवी की मंत्रों का उच्चारण करते रहते थे। इसलिए सरस्वती देवी ने उनको वरदान दिया था कि वो किसी भी विद्वान को हरा पाएंगे, कि उनके जैसा विद्वान पृथ्वी भर में कोई नहीं होगा। और इस वरदान का घमंड आ गया केशव कश्मीरी को, और हर जगह वो भ्रमण करते देश भर में और सारे विद्वानों को ब्राह्मणों को चुनौती देते कि या तो आप मेरे साथ वाद विवाद करो और हार जाओ, या अगर आप वाद विवाद करने से डर रहे हो तो फिर आप मुझे एक जय पत्र दे दो, जय पत्र पर आपकी दस्तखत करके मुझे दे दो। जय पत्र में यह लिखा होता था कि मैं, मेरा नाम फलाना फलाना है और मैंने वाद विवाद की प्रतियोगिता की है केशव कश्मीरी के साथ और मैं पूरी तरह से हार गया, और केशव कश्मीरी को मैं सर्वश्रेष्ठ विद्वान पंडित मानता हूं, और फिर उनके सही। इस तरह से जय पत्र के ऊपर हजारों हजारों के बड़े बड़े विद्वानों की दस्तखत थी। तो जय पत्र सब जगह जाकर दिखाते थे और जहां भी जाते थे ब्राह्मण उधर से भाग जाते थे। जिस शहर में वो जाते थे अचानक सारे ब्राह्मणों को कोई न कोई वजह से बाहर जाना पड़ता। एक ब्राह्मण कहता कि अरे मेरे पत्नी के परिवार में कुछ समस्या हुई, हमें जाना पड़ेगा। कोई कहने लगा कि अचानक मुझे कोई वहां किसी यजमान ने बुलाया है, मुझे यज्ञ के लिए जाना पड़ेगा। ऐसे कोई न कोई बहाना बनाकर सारे ब्राह्मण उस शहर से भाग जाते, क्योंकि वो जानते थे कि केशव कश्मीरी का सामना कोई भी नहीं कर सकता है। तो केशव कश्मीरी को भी बड़ा घमंड था, सरस्वती देवी का वरदान आखिर था उनके ऊपर। अब सरस्वती देवी विद्या की देवी तो है, लेकिन वास्तव में वो है कौन? सरस्वती देवी वास्तव में विष्णु भक्ति स्वरूपिणी है। विष्णु वक्षस्थिता रमा भेदे मूर्ति सरस्वती जगन माता। बताया जाता है कि विष्णु की भक्ति की प्रत्यक्ष स्वरूप श्रीमती सरस्वती देवी है, लक्ष्मी देवी से अभिन्न है, इसलिए वो विष्णु जी के वक्षस्थल पर निवास करती हैं और सारे जगत के कि वो माता हैं। सरस्वती दिव्य ज्ञान की मूर्तिमान स्वरूप है। विद्या मतलब दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। संसार के ज्ञान को विद्या नहीं कहते हैं, उसको अविद्या कहते हैं। जो आजकल स्कूल में कॉलेज में सिखा रहे हैं वो विद्या नहीं है, हालांकि उसे विद्यालय कहते हैं हम, लेकिन वो है अविद्या, क्योंकि उसका संबंध इस संसार से है। जिस विद्या का संबंध अलौकिक संसार से है या अलौकिक जगत से है, भगवान के धाम से है, उसको विद्या वास्तव में कहते हैं। तो सरस्वती देवी दो, जो मूल सरस्वती देवी हैं जिनको शुद्धा सरस्वती देवी कहते हैं, वो तो लक्ष्मी जी के स्वरूप हैं। और वो जब किसी भी भक्त के ऊपर कृपा करती हैं जो कि कृष्ण की भक्ति करना चाहता है, तो उसे सबसे ऊंचा वरदान दे देती हैं और वो है कृष्ण भक्ति का। लेकिन जब वो देखती हैं कि उनके उपासक के हृदय में बहुत घमंड है, बहुत ही भोग करने की इच्छा है, तो फिर उस व्यक्ति को वो ऐसे आध्यात्मिक विद्या नहीं देते। फिर वो अपने छाया के स्वरूप में दुष्टा सरस्वती के रूप में आकर उसकी आंखों के सामने एक पर्दा डाल देती हैं और उसको भौतिक ज्ञान दे देती है। और अगर वो सरस्वती देवी की इस भावना से बहुत उपासना कर रहा हो जैसे केशव काश्मीरी कर रहे थे, तो उनको बड़े विद्वान भी बना देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान उनको नहीं देते, कृष्ण भक्ति उनको नहीं देते हैं। यह है सरस्वती देवी की विशेषता, क्योंकि सरस्वती देवी भगवान विष्णु की भू शक्ति है। वास्तव में वो भगवान के नाम की पत्नी है। भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान का नाम हरि नाम भी व्यक्ति है, क्योंकि भगवान के धाम में सब कुछ व्यक्ति, हर एक वस्तु व्यक्ति है। वहां पत्थर भी व्यक्ति है, वहां पानी का बूंद भी व्यक्ति है। वह भगवान के धाम में कोई भी जड़ वस्तु नहीं है। यहां पर जड़ वस्तु है, सब भरे हुए हैं, ये भी जड़ वस्तु है। केवल आत्मा और भगवान, वही दो चेतन वस्तु है ये संसार में। लेकिन भगवान के धाम में प्रत्येक वस्तु चेतन वस्तु है। इसलिए जो भगवान का नाम है, भगवान से अभिन्न है, वो भी एक व्यक्ति है, कृष्ण ही है। इसलिए उनको हम हरि नाम प्रभु कहते हैं। जैसे हम एक दूसरे को बुलाते हैं तो प्रभु जी माता जी कहते हैं प्रभु, तो उसी तरह से हरि नाम प्रभु, वो हमारे प्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु ने सुंदर 8 श्लोकों की रचना की थी, जिनको हम शिक्षाष्टकम कहते हैं। हरि नाम की महिमा का वर्णन उन्होंने सबसे पहले श्लोक में ही किया था। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, जय जयकार हो श्री कृष्ण संकीर्तन के आंदोलन का। क्योंकि श्री कृष्ण संकीर्तन करने से चित्त का मार्जन होता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, इसमें संसार रूपी दावानल का शमन हो जाता है। ये संसार में हर प्रकार की आग लगी हुई है, हमारे हृदय में आग लगी हुई है, नाना प्रकार के दुख कष्ट मोह इत्यादि हमारे हृदय में हैं। इसलिए जब हम श्री कृष्ण संकीर्तन को स्वीकार करते हैं तो हमारे हृदय में जो प्रज्वलित अग्नि जल रही है उसका शमन हो जाता है। इसलिए चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम। ये श्री कृष्ण संकीर्तन एक ऐसे चंद्रमा के समान है, जिस प्रकार चंद्रमा अपने किरणों का वितरण करता है, तो ये श्री कृष्ण संकीर्तन सारे कल्याणकारी एक वस्तु है, जो कि सारे कल्याण सारे जगत भर में सबका कल्याण करता है। विद्यावधू जीवनम, विद्या अर्थात सरस्वती देवी मतलब दिव्य ज्ञान, वधु मतलब पत्नी, जीवनम तो प्राण, तो हरिनाम का प्राण है विद्या, क्योंकि विद्या उनकी पत्नी है। तो हरिनाम प्रभु की पत्नी है सरस्वती देवी, भगवान के नाम की पत्नी है सरस्वती देवी। पत्नी हमेशा पति की सेवा में लगती है, इसलिए सरस्वती देवी जो कि मूर्तिमान विद्या है, आध्यात्मिक ज्ञान है, वो हरिनाम की सेवा में लगी हुई है। दूसरे शब्दों में ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य एक ही है कि हम हरिनाम लेने के स्तर तक पहुंचे। अगर कोई व्यक्ति बहुत शिक्षित हो लेकिन उसके पास हरिनाम का धन नहीं है तो वास्तव में वो अविद्या में है। कोई व्यक्ति अगर बड़ा संसार में पढ़ा लिखा हो जाता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, लोग प्रभावित हो जाते हैं। अच्छा, आप बीए एमए पीएचडी हो, आपके पास इतने डिग्री हैं कॉलेज के विश्वविद्यालय के, लेकिन अगर किसी के पास भगवत गीता का ज्ञान है तो लोग ज्यादा इसको महत्व नहीं देते। तो यह है अंतर अविद्या में और विद्या में। अन्यत एवाहुर विद्यया, अन्यत आहुर अविद्यया, इति शिष्यमधीराणाम ये नस्तद विचक्षरे। ईशोपनिषद में बताया गया है कि अगर हम विद्या का अनुशीलन करते हैं तो हमें एक गति की प्राप्ति होगी, और अविद्या का अनुशीलन करेंगे तो दूसरी गति होगी। लेकिन आजकल लोग केवल अविद्या का अनुशीलन कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि केवल हम स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, डिग्री प्राप्त कर लेंगे और हम बड़े विद्वान हो जाएंगे। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि ये जड़ विद्या माया का वैभव है। जड़ विद्या ए मायार वैभव, कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर। मतलब ये जो इतने बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज वगैरह हैं, जिनमें कोई भगवत ज्ञान नहीं दिया जाता है, ये केवल सब माया के खेल है, माया का वैभव है, जिसमें जो भी तथाकथित ज्ञान दिया जाता है केवल विद्यार्थियों को और अध्यापकों को संसार के चक्र में बांध के रखता है। किसी भी हमारे विद्यालय में, विश्वविद्यालय में ये ज्ञान नहीं दिया जाता कि हमें संसार चक्र से किस प्रकार से मुक्त होना चाहिए। केवल संसार के बंधन को बढ़ाने के लिए हमें तरीका बताया जाता है। इसलिए अलग अलग प्रकार के बड़े बड़े शिक्षित, तथाकथित शिक्षित लोग भी भगवान को नहीं मानते हैं। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परितज्ञाना। वो कहते हैं आसुरम भावमाश्रित, कि चार प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण के शरण में कभी भी नहीं आते हैं। एक तो है मूढ़, दूसरे हैं जिन्होंने आसुरी भाव का आश्रय लिया है, तीसरे हैं जो मायया परित ज्ञाना, जिनका ज्ञान माया ने हरण कर लिया है, और फिर जो नराधम है, मनुष्यों में से सबसे अधम। तो इस प्रकार के लोग बड़े बड़े शिक्षित भी हों, लेकिन जो आदमी भगवान का नाम का उच्चारण नहीं करता है, जो भगवान श्री हरि की भक्ति नहीं करता है, हमें जानना चाहिए कि सरस्वती देवी की छाया, दुष्टा सरस्वती देवी ने उनको माया के जाल में फंसा के रखा है। तो दिग्विजय पंडित केशव कश्मीरी वास्तव में माया के जाल में थे, लेकिन वो नहीं जानते थे। वो सोचते थे कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं। तो वो चलते चलते नवद्वीप की ओर आए, क्योंकि उन्होंने सुना था कि नवद्वीप में बहुत बड़े बड़े पंडित हमें दिखाई पड़ेंगे। तो आगे जब आए नवद्वीप में, तो वहां के सारे जो ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, वो भी घबरा गए। सारे शहर में हाहाकार मच गया कि अरे, तुमने सुना है क्या, केशव कश्मीरी नाम के दिग्विजय पंडित आ रहे हैं, उनके हाथ में जय पत्र लेकर आ रहे हैं। अब क्या होगा, हमारा नाम, हमारी इज्जत सब नष्ट हो जाएगी। और वो हर एक व्यक्ति को पकड़ पकड़ कर चुनौती देता है। और अगर विश्व भर में ये खबर फैल गई कि नवद्वीप, जो कि शिक्षण के लिए इतना महत्वपूर्ण स्थान है, उसमें दिग्विजय केशव कश्मीरी ने विजय प्राप्त कर ली है, तो फिर हमारा क्या होगा, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो ऐसे बातचीत सारे शहर में चल रही थी। केशव कश्मीरी जब नवद्वीप में प्रवेश किया उन्होंने, तो कैसे आए, बड़े शानदार तरीके से, राजा की तरह से आए। हाथी, घोड़े, पालकी, बड़े बड़े नौकर, चाकर इत्यादि, बैंड बाजा उनका बज रहा था। ऐसे बड़े राजा की तरह से नवद्वीप में प्रवेश किया उन्होंने, और जितने ब्राह्मण थे अपने अपने घरों में सब गए, छुप गए। और खबर निमाय पंडित तक पहुंची। निमाय पंडित के कई शिष्य निमाय पंडित के पास आए और कहने लगे कि हमने ऐसा सुना है कि ये जो केशव कश्मीरी है, उसको सरस्वती का वरदान मिला है, और इतना विद्वान पंडित है कि स्वयं सरस्वती देवी उसकी जिह्वा पर उपस्थित होती है 24 घंटे। और नवद्वीप के सारे ब्राह्मण कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति का सामना हम कैसे कर सकते हैं जिनको इस तरह का वरदान सरस्वती देवी का मिला है, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। और बड़े बड़े हाथी, घोड़े, पालकी लेकर आए हैं ये। तो निमाय पंडित ने सुना, हल्की मुस्कान करी और कहने लगे कि जिन व्यक्तियों के हृदय में घमंड होता है, तो भगवान श्री हरि उस घमंड का बहुत ही जल्दी नाश कर देते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अपने आप के अंदर कोई गुण हो, उस गुण के बारे में बहुत घमंड हो जाता है, तो भगवान श्री हरि बड़ी कृपा करते हैं उस व्यक्ति के ऊपर, और इस घमंड का जो वजह है उसको, उसका संहार कर देते हैं। बड़े बड़े दिग्विजय हुए हैं इतने सारे, जैसे कि कार्तवीर अर्जुन, जैसे कि नहुष राजा, जैसे कि वेण राजा, जैसे रावण, नरकासुर, बाणासुर सब बड़े बड़े शक्तिशाली दिग्विजयी राजा थे, लेकिन देखो क्या भगवान ने उनका विनाश नहीं किया, क्या उनके घमंड का चूर चूर नहीं हुआ। नहुष राजा, इनका वर्णन भागवत में भी आता है और महाभारत में भी, बहुत शक्तिशाली राजा थे लेकिन उनका पतन हो गया। कार्तिवीर अर्जुन भी बहुत घमंडी बन गए थे, परशुराम जी के पिता जमदाग्नि के प्रति उन्होंने अपराध किया तो परशुराम ने उनकी हत्या कर दी। वेन राजा तो बड़े दुष्ट थे तो ब्राह्मणों ने उनकी हत्या कर दी। रावण भी बड़ा दुष्ट था, प्रभु रामचंद्र जी ने उनकी हत्या कर ली। उस प्रकार से नरकासुर स्वयं वराहदेव के पुत्र थे लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनकी हत्या कर दी। बाणासुर की हत्या भी भगवान श्री कृष्ण ने कर दी। तो इस तरह से निमाई पंडित कहने लगे कि दिग्विजय बहुत सारे आए हैं और गए हैं संसार में, लेकिन सबका घमंड चूर चूर हो गया है, भगवान किसी को भी छोड़ते नहीं हैं। और ये सही बात है, वास्तव में ऐसे कहावत है कि भगवान की चक्की भले धीरे चलती हो लेकिन पीसती है तो इस तरह से पीसती है कि कुछ भी एक कण भी छोड़ती नहीं है। कई बार लोग ये कहते हैं कि देखो वो आदमी कितना दुष्ट है फिर भी अमीर बनते जा रहा है, वो आराम से जी रहा है, हम कितने अच्छे आदमी हैं लेकिन हमारे जीवन में कितने कष्ट आते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो हमें श्रद्धा रखनी चाहिए कि जो व्यक्ति बुरे कार्य कर रहा है, पाप कार्य कर रहा है, उन कार्यों का फल उसको मिलकर ही रहेगा। भगवान के दरबार में देर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता है, अन्याय कभी नहीं होता है भगवान के दरबार में, इसलिए उसको उसके पापों का फल मिलकर ही रहेगा। भगवान की चक्की उसको भी आकर पीस डालेगी बड़े अच्छे ढंग से। और जो अच्छे आदमी हैं, जिनके जीवन में कष्ट आ रहा है, उनको समझना चाहिए कि हमारे पूर्व जन्मों के पापों की वजह से हमें अब कष्ट मिल रहा है, लेकिन अभी अगर हमने अच्छे कार्य किए, भगवान की सेवा की, तो इसका मीठा फल भविष्य में जाकर मिलेगा, क्योंकि भगवान के दरबार में अंधेरा नहीं होता है कभी। तो इस तरह से निमाय पंडित समझा रहे थे कि दिग्विजय पंडित हो कोई भी हो, भगवान श्री हरि उनको बहुत जल्दी सबक सिखाएंगे, उनका घमंड चूर चूर कर देंगे। दिग्विजयी ब्राह्मण भी हो सकते हैं, क्षत्रिय भी हो सकते हैं, वैश्य भी हो सकते हैं। ब्राह्मण दिग्विजय वो होता है जो इतना विद्वान होता है कि सारे अन्य ब्राह्मणों को तर्क में, वाद विवाद में, विद्वत्ता में हरा देता है, क्योंकि ब्राह्मण की शक्ति उसकी विद्या होती है और क्षत्रिय की शक्ति उसकी बाहों में होती है। तो जो क्षत्रिय आठों दिशाओं में दूसरे अन्य राजाओं को परास्त करके विजय प्राप्त कर लेता है वो भी दिग्विजयी कहलाता है। और वैश्य जो होता है उसकी शक्ति उसके धन में होती है। तो जिसने कृषि से या व्यवसाय से बहुत धन कमा लिया हो और यश प्राप्त कर लिया हो उसको भी एक दिग्विजयी वैश्य कहते हैं। तो खैर निमाय पंडित ने कहा किसी भी प्रकार का दिग्विजय क्यों न हो, अगर उसके हृदय में घमंड आ गया तो घमंड का चूर होकर ही रहेगा, तो चिंता नहीं करना। तो इस तरह से निमाय पंडित एक दिन अपने शिष्यों के संग में गंगा जी के तट पर गए, गंगा जी के जल का स्पर्श किया, अपने सर में छिड़क दिया और फिर गंगा जी को नमस्कार करके अपने आसन ग्रहण किया, वीरासन में बैठे। वीरासन में बैठकर संन्यास का योग पट्ट पहना हुआ था और ऐसे सुंदर लग रहे थे मानो कि पूर्णिमा का चांद, और वैसे थी वो पूर्णिमा की रात, और उस समय इतने सुंदर लग रहे थे निमाय पंडित, उनके दांत ऐसे लग रहे थे जैसे मोतियों की माला है, उनके आंख ऐसे लग रहे थे जैसे कि कमल पुष्प, उनके लंबे लंबे काले घुंघराले बाल भी बड़े सुंदर लग रहे थे, और इस प्रकार से उनका स्वर्ण वर्ण बहुत ही सुंदर दृश्य था, और उनके इर्द गिर्द उनके हजारों शिष्य बैठे हुए थे और वो धर्मशास्त्र के ऊपर कथा कर रहे थे, कृष्ण कथा और वो शास्त्रों की कथा कर रहे थे। उस समय चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित ने कुछ कहा नहीं किसी से, लेकिन अपने मन ही मन में चिंतन कर रहे थे कि ये दिग्विजय पंडित आया है, अब किस प्रकार से इसका घमंड का नाश करना है। अगर भरी सभा में मैंने इसको हरा दिया तो इसका इतना दुख होगा कि वो अपना प्राण ही त्याग देगा, और अगर सबके सामने मैंने इसको हरा दिया तो अन्य जो लोग हैं नवद्वीप के वो तो उसका सब कुछ हरण कर लेंगे, उसके हाथी घोड़े पालकी सब कुछ छीन लेंगे और बेचारे के पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। इसलिए मुझे एक एकांत स्थान में जाकर उससे वाद करना चाहिए और उसको हरा देना चाहिए ताकि वो नम्र बने और साथ साथ में उसका घमंड भी चूर हो जाए और उसका गौरव भी बना रहे। घमंड चूर हो जाएगा लेकिन गौरव थोड़ा बहुत बना रहेगा। चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों से बताया, फलवंत वृक्ष और गुणवंत व्यक्ति ये दोनों एक समान होते हैं। फलवंत वृक्ष मतलब जिस वृक्ष में बहुत सारे फल हैं, इतने सारे फल हैं, फल का बोझ इतना है कि बोझ के मारे सारे वृक्ष की शाखाएं वो झुक गई हैं। जिस तरह से वृंदावन में सारे वृक्ष की डालियां एकदम झुक जाती थी जब कृष्ण वहां से गुजरते थे, मानो कि कृष्ण को वंदन करने के लिए, कृष्ण को नमस्कार करने के लिए, दंडवत करने के लिए। तो निमाय पंडित ने कहा कि फलवंत वृक्ष जो होता है जिसमें बहुत फूल होते हैं, फल होते हैं, वो नम्र होता है, और जो गुणवंत व्यक्ति होता है जिस वक्त जो गुणवान है वो भी झुकता है, नम्र होता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान का बहुत सबसे पहला लक्षण ये है कि कोई व्यक्ति नम्र होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने ज्ञान के बारे में घमंड रखता है तो फिर इसका मतलब है कि उसके पास वो अज्ञानी है, ज्ञानी नहीं है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने सुंदर उपमा दी कि फलवंत वृक्ष और गुणवंत जन वो दोनों झुकते हैं, इसलिए महान है। तो अगर केशव कश्मीरों को भी हमें वास्तव में ज्ञान क्या है वो देना चाहिए। तो ठीक उसी समय केशव कश्मीरी गंगा जी के तट पर आए, उनके साथ में उनके कई साथी पार्षद, और दूर से ही उन्होंने निमाय पंडित को देखा, बड़े आश्चर्यचकित हो गए निमाय पंडित के सौंदर्य को देखकर। उन्होंने पूछा, ये कौन है, क्या ये निमाय पंडित है? तो अन्य उनके साथ में जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा, हाँ यही वो प्रसिद्ध विद्वान निमाय पंडित है। तो उस समय दिग्विजय केशव कश्मीरी पंडित के मन में एक प्रकार का भय जागृत हो गया। ये स्वाभाविक है कि कोई भी भगवान के सामने आता है तो भयभीत हो सकता है, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं, जब आप किसी व्यक्ति का सामना कर रहे हैं जिसके हाथों में लाठी है तो अपने खाली हाथों से आप उसके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि उसके पास इतना अस्त्र शस्त्र है, लाठी है, और आपके पास कुछ नहीं है। ठीक उसी तरह से केशव कश्मीरी के हृदय में यह विचार चल रहा था कि इतने बड़े आदमी, इतना बड़ा विद्वान, तो मैं अगर जाके उसको चेतावनी दूं तो क्या होगा। पहले कभी ऐसी भावना केशव कश्मीरी के हृदय में नहीं आई थी। वैसे तो केशव कश्मीरी सीमित ज्ञान के एक कुएं के बराबर थे, और निमाय पंडित जो कि स्वयं भगवान है वो असीमित ज्ञान के सागर के बराबर थे। तो कुएं की तुलना कभी सागर से कर सकते हैं? कभी नहीं। तो इस तरह से केशव कश्मीरी ने अपने हौसले को बनाए रखा और आगे गए, गंगा जी के सामने गंगा जी को जाके नमस्कार किया, और फिर निमाय पंडित के सभा में आ पहुंचे। जब निमाय पंडित ने उनको देखा तो निमाय पंडित मुस्कुराए, अपने आसन से उठे और बड़े आदर से उनको एक आसन दिया, और उन्होंने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे बड़े पंडित हमारे बीच में आए हैं। तो इतना आदर से स्वागत करने के बाद में भी केशव कश्मीरी नम्र नहीं बने। उन्होंने जवाब दिया, तुम व्याकरण के बड़े अध्यापक हो, हमने सुना है कि तुम्हारा नाम निमाय पंडित है और तुम बाल्य शास्त्र, शिशु शास्त्र व्याकरण के सिखाते हो, ऐसा हमने सुना है, और तुम्हारे जो शिष्य हैं बड़े निपुण हैं व्याकरण में, तुम कलाप व्याकरण सिखाते हो सब शिष्यों को और बड़े विद्वान बने हैं तुम्हारे सारे शिष्य, ऐसे हमने सुना है। तो वैसे व्याकरण को पढ़ने के लिए 12 साल लगते थे, और उसके बाद में व्याकरण में जब व्यक्ति निपुण हो जाता था तो किसी भी शास्त्र का अध्ययन कर सकता था, और इस योग्य हो जाता था कि शास्त्रों में जो बताया गया है उन शब्दों का तोड़ मोड़ करके अपना ही कुछ निष्कर्ष निकाल के वो अपने मत को प्रस्तुत कर ले। तो शुष्क व्याकरण के ज्ञान से यही फल मिलता था कि शास्त्रों का तोड़ मोड़ हो जाए। लेकिन जो इस तरह के शुष्क विद्वान थे वो इस तोड़ मोड़ को विद्वत्ता समझते थे, नहीं जानते थे कि विद्या वधु जीवनम, कि हरि नाम ही विद्या वधु के जीव है, प्राण है। इसलिए वो सोचते थे कि कलाप व्याकरण ये भी एक प्रकार का व्याकरण है, जैसे पाणिनि का व्याकरण, कौमुदी व्याकरण, कलाप व्याकरण। तो उस समय निमाय पंडित बड़े नम्र रहे और उन्होंने कहा, हे माननीय पंडित जी, मैं तो केवल एक शिशु हूं, एक छोटा सा बच्चा हूं, नवीन विद्यार्थी हूं, और जो मैं पढ़ाता हूं इसका कोई असर मेरे विद्यार्थियों के ऊपर नहीं होता और न ही वो मेरी कोई बात समझ सकते हैं। लेकिन आप तो इतने बड़े विद्वान हैं, आपके जैसा कोई संसार में कवि नहीं है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आपसे हम कुछ सीखें। तो कृपा करके ऐसे कोई हमें कविता सुनाइए जिससे हम लाभान्वित हो जाएं। यहां गंगा जी हमारे पास में है, कृपा करके गंगा जी की स्तुति करें, क्योंकि गंगा जी का वर्णन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो उस समय केशव कश्मीरी ने आपके पलके को बंद किए बिना फटाफट श्लोकों की रचना आरंभ की और बादलों के गरजने की तरह से उन्होंने एक के बाद एक सुंदर सुंदर श्लोकों की रचना उसी क्षण में की है। ऐसा नहीं कि पहले उन्होंने श्लोक की रचना की थी और जो कंठस्थ था अभी केवल उन्होंने दोहराया, ऐसा नहीं, नए श्लोकों की रचना की खड़े खड़े। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि एक घंटे में अर्थात 60 मिनट में उन्होंने 100 श्लोक बनाए, तूफान की तरह बोलते गए, एक के बाद एक। और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, ऐसे ऐसे अलंकार, ऐसे अलंकृत भाषा में कि सारे निमाय पंडित के विद्यार्थी अवाक रह गए, मुंह खोलकर आंख बड़े होकर देखते रह गए। राम राम, ऐसे विद्वत्ता हमने कभी नहीं देखा है, ये तो अमानुषीय विद्या है। सबके बीच में ऐसे इस तरह के बातें चलती रही। और जब समाप्त हो गया उनका तूफान, एक के बाद एक सुंदर की सुंदर श्लोक, 100 श्लोक, फिर केशव कश्मीरी रुक गए और निमाय पंडित की ओर देखा। निमाय पंडित कहने लगे, वास्तव में आप जैसे संसार में कोई कवि नहीं है, आपकी कविता केवल दो व्यक्ति इस सारे ब्रह्मांड में समझ सकते हैं, वो है आप और दूसरे हैं सरस्वती देवी, और कोई समझ नहीं सकते हैं इतनी सुंदर कविता आपकी। तो हम सब तो शिशु हैं, ये कविता हम सब कैसे समझ सकते हैं, तो कृपा करके आपकी कविता का कोई श्लोक हमें समझाइएगा, इसका अर्थ क्या है। तो केशव कश्मीरी ने कहा, ठीक है, कौन सा श्लोक सुनाऊं। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने उनके 100 श्लोकों में से एक श्लोक चुन लिया और उस एक श्लोक का उन्होंने उच्चारण किया और वही श्लोक यहां पर आज सामने है। महत्वं गंगाया सततमिदं आभाति नितराम, यदेशा श्री विष्णुः चरणकमलोत्पते सुभगा, द्वितीय श्री लक्ष्मीरिव सुरनरेर अर्च चरणा, भवानि भर्तुर्या शिरसि विभवत्यद्भुत गुणा। प्रभु जी, एक माता जी बोल सकते हैं। अनुवाद इस प्रकार से है, माता गंगा की महानता सदैव बनी रहने वाली है, वे परम भाग्यशालिनी हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के चरण कमलों से निर्गत होती हैं, वे द्वितीय लक्ष्मी हैं, इसीलिए देवता तथा मनुष्य उनकी सदा पूजा करते हैं, वे सारे अद्भुत गुणों से समन्वित होकर शिवजी के मस्तक पर सुशोभित होती हैं। तो ये श्लोक जब निमाय पंडित ने सुनाया तो केशव कश्मीरी विस्मित हो गए, मुंह खोल के कहने लगे, मैंने तो सारे 100 श्लोक तूफान की तरह कहे, तुम्हें इनमें से एक भी श्लोक कैसे कंठस्थ हो गया? बड़े आश्चर्य की बात है। तो निमाय पंडित ने बड़े नम्रता से उत्तर दिया कि हे माननीय पंडित जी, जिस प्रकार से भगवान की असीम कृपा से कोई व्यक्ति आप जैसा बड़ा विद्वान और महान कवि हो सकता है, उसी तरह से उसी भगवान की कृपा से कोई व्यक्ति श्रुतिधर भी हो सकता है। श्रुतिधर मतलब जो व्यक्ति किसी चीज को एक बार सुन ले हमेशा याद रख ले। अगर हम सब श्रुतिधर होते तो कितना अच्छा होता नहीं, लेकिन इतना आसान नहीं है। पहले द्वापर युग, त्रेता युग, सत्ययुग में प्राय सभी लोग, खास करके जो ब्राह्मण हुआ करते थे, वो श्रुतिधर थे। इसलिए गुरुकुल में जाकर जो भी गुरु से एक बार सुन लेते हमेशा उनके स्मृति में रह जाता था। इस तरह से गुरु सिखाते थे। वहां कोई पुस्तकें नहीं थी, किताबें नहीं थी, कलम की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए केवल गुरु बोलते थे, शिष्य सुनते थे और याद रखते थे। सभी लोग श्रुतिधर हुआ करते थे। अभी आजकल कोई श्रुतिधर नहीं मिलता है। तो आगे निमाय पंडित ने कहा कि कृपा करके ये श्लोक के अंदर जो भी कोई गुण और दोष हैं, उन्हें आप समझाइए, क्योंकि हम जानना चाहते हैं। तो केशव काश्मीरी ने बड़े घमंड से कहा, मेरे जो भी रचना है श्लोकों की, इनमें लेश मात्र दोष भी नहीं है, बल्कि इसमें अच्छे अच्छे गुण हैं। जैसे कि इसमें अनुप्रास है। अनुप्रास मतलब वो एक प्रकार का अलंकार है किसी कविता में या श्लोक में, जिसमें कोई अक्षर बार बार दोहराया जाता है। जैसे कि आखिरी लाइन में भवानी भर्तुर यशरसी विभवत्य अद्भुत गुणा, उसमें भ अक्षर जो है वो 4 बार दोहराया गया है, तो इसको अनुप्रास कहते हैं। तो ये एक प्रकार का अलंकार है कविता में। तो केशव काश्मीरी कहने लगे, मेरे इस श्लोक में ये अनुप्रास का अलंकार है, और उसके सिवाय उपमा के अलंकार भी 2 हैं, लक्ष्मी इव, ये गंगा जी की उपमा तुलना हमने लक्ष्मी जी से की है, और फिर विष्णु चरण कमल उत्पत्ति, विष्णु के चरणों को हमने कमल से तुलना की है। तो ये तो अलंकार ही इसमें है, उपमा है, कोई दोष नहीं है। तो चैतन्य महानिमाय पंडित कहने लगे, ये अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि इसका विश्लेषण किया जाए, ताकि इनमें जो भी दोष हैं और जो गुण हैं, वो हम स्पष्ट रूप से जान लें। केशव कश्मीरी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि जो श्लोक तुमने बताया है वो बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम तो एक व्याकरण के विद्यार्थी हो, तुम्हें अलंकार शास्त्र इत्यादि के बारे में क्या मालूम है? केशव काश्मीरी समझते थे कि व्याकरण जो है ये बहुत निम्न श्रेणी का ज्ञान है, और वो सही है। आगे चल के काव्य शास्त्र है, अलंकार शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, इतने सारे बड़े बड़े शास्त्र हैं। तो अलंकार ये जो व्याकरण की शिक्षा है ये बहुत निम्न श्रेणी की मानी जाती थी। तो केशव काश्मीरी ने सोचा कि ये निमाय पंडित क्या मेरे कविता में दोष ढूंढने वाला है, इसके बारे में अलंकार क्या ढूंढने वाला है? तो निमाय पंडित ने कहा, हाँ वो तो सही है, मैंने तो कभी अलंकार शास्त्र पढ़े नहीं है, मैं तो छोटा बालक हूं, लेकिन फिर भी जो भी मैंने कुछ अधिकृत व्यक्तियों से थोड़ा दो शब्द सुन लिया है, उसके अनुसार मैं विश्लेषण करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, करो विश्लेषण और बताओ कि मेरे कविता में क्या दोष है और क्या गुण है। तो निमाय पंडित कहने लगे कि आपके कविता में 5 दोष हैं और 5 अलंकार हैं इस श्लोक में। वैसे तो आपके हर एक श्लोक में दोष है, लेकिन इस श्लोक में 5 दोष और 5 गुण। आपके इस श्लोक में अविमृष्ट विधियांश, इसके 2 प्रकार के दोष हैं। पहला दोष यह है कि आपने शुरुआत की है आपके श्लोक का महत्वम गंगाया शब्द से। जिसमें आप ये बताना चाहते हैं कि गंगा जी कितने महत्व कितनी महान है। लेकिन ये अपरिचित विषय है, जो परिचित विषय है वो है इदम। तो परिचित विषय को अपरिचित विषय के हमेशा पहले होना चाहिए। अगर अपरिचित विषय पहले आ गया तो हमें कैसा पता चलेगा कि क्या विषय है? तो इसलिए भ्रांति हो सकती है, संशय हो सकता है। तो ये इदम गंगायाम महत्वम के पहले आना चाहिए था। दूसरी बात, आपने कहा है द्वितीय श्री लक्ष्मी, तो द्वितीय भी एक अपरिचित है। द्वितीय कौन अद्वितीय है, कौन द्वितीय है? श्री लक्ष्मी। तो श्री लक्ष्मी पहले आने चाहिए, द्वितीय बाद में आना चाहिए, क्योंकि आपने अपरिचित वस्तु को परिचित वस्तु के पहले लगा दिया है। और जब ऐसे किया जाता है तो फिर संशय की भावना जागृत हो सकती है। तो ये अविमृष्ट विधेयांश दोष, इसमें दो है इस श्लोक में। तीसरा जो दोष आपके श्लोक में है उसको विरुद्ध मति कहते हैं। विरुद्ध मति मतलब आपने यहां पे भवानी भर्तुर शब्द का आपके हृदय के संतुष्टि के अनुसार प्रयोग किया है। आपका कहने का मतलब था भवानी भर्तु मतलब शिवजी, लेकिन ये विरुद्ध मति है। क्यों? क्योंकि शिवजी का नाम है भव और शिवजी की पत्नी दुर्गा देवी के नाम है भवानी। भवानी मतलब भव की पत्नी और भर्तु मतलब पति। तो भवानी भर्तु का मतलब है दुर्गा शिवजी के पत्नी के पति, भव के पत्नी के पति। तो अभी दुर्गा देवी के कितने पति हैं? दुर्गा देवी के एक ही पति हैं। तो आपको केवल भव कहना चाहिए था, भवानी भर्तु नहीं। क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर हमने कहा कि ब्राह्मण के पत्नी के पति को दान दीजिए, क्या कि इसका मतलब है कि ब्राह्मण के पत्नी के कई पति हैं? एक ही पति है। उसी प्रकार से भवानी भर्तु शब्द का प्रयोग करने से ऐसे प्रतीत होता है कि दुर्गा देवी के शिवजी के भी अलावा और कोई पति है। तो ये भी आपका दोष है। आपका तीसरा चौथा दोष है भग्न क्रम, क्योंकि आपने अलग अलग जगह तीनों पहले लाइन में, तीसरे लाइन में और चौथे लाइन में अनुप्रास है। जैसे कि पहले लाइन में पांच बार त अक्षर आता है, तीसरे लाइन में पांच बार र अक्षर आता है और चौथे लाइन में चार बार भ अक्षर आता है, लेकिन दूसरे लाइन में कुछ नहीं है। तो इसको भग्न क्रम कहते हैं। ये अनुप्रास हो तो चारों लाइनों में होना चाहिए, लेकिन तीन लाइन में है, दूसरे में नहीं है, इसलिए भग्न हो जाता ये क्रम। इसलिए भग्न क्रम का दोष है। जैसे जैसे वर्णन करते जा रहे थे, केशव कश्मीरी का मुंह बड़ा होते जा खुलते जा रहा था, आंखें बड़ी बड़ी होती जा रही थी। और फिर आखिरी आपका दोष है कि परम उक्ति, जिसमें आपने कहा है विभावती शब्द। विभावती अपने आप में ही पर्याप्त है, इसलिए आपने जो अद्भुत गुण शब्द उसके बाद में प्रयोग किया है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह भी एक दोष है। तो ये पांच तरह के दोष हैं और पांच प्रकार के अलंकार आपके इस श्लोक में हैं। उनमें से दो जो अलंकार हैं, एक है अनुप्रास। अनुप्रास मतलब जब कोई अक्षर किसी लाइन में बार बार दोहराया जाता है उसको अनुप्रास कहते हैं। तो जैसे अभी अभी हमने वर्णन किया, ये अनुप्रास की अलंकार है कि पहले लाइन में त पांच बार, तीसरे लाइन में र पांच बार, चौथे लाइन में भ चार बार, ये एक अलंकार है। और दूसरा है कि श्री और लक्ष्मी, वैसे दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन जब लक्ष्मी के साथ में आप श्री शब्द का प्रयोग करते हो तो इसका मिठास बढ़ जाता है, क्योंकि आप ये बताना चाहते हो कि लक्ष्मी जी के पास कितना ऐश्वर्य है। तो इसलिए ये भी एक अलंकार है। तो ये दो प्रकार के शब्द अलंकार हुए और तीन प्रकार के अर्थ के अलंकार हैं। उसमें से पहले है उपमा, जो आपने कहा लक्ष्मी इव, अर्थात गंगा जी लक्ष्मी जी के समान है, बहुत सुंदर है। और दूसरी जो अलंकार है, अर्थ अलंकार, उसको कहते हैं विरोधाभास। जिसमें आप ये बताते हैं कि गंगा जी कमल से आती है। वास्तव में कमल जल से आता है, इसलिए कमल का नाम है जलज या जलजा। जल में जिसका जन्म होता है उसको कमल कहते हैं। कमल पुष्प हमें ना किसी हमेशा किसी सरोवर में मिलता है, जमीन में नहीं मिलता। तो जल से उत्पन्न होने वाला कमल पुष्प है। लेकिन आपने बताया है कि जल गंगा जी का जल कमल से उत्पन्न हो रहा है, यह विरोधाभास लगता है, लेकिन वास्तव में विरोधाभास नहीं है, क्योंकि यह कमल क्या है? यह भगवान श्री कृष्ण के चरण है। तो ऐसे चरण कमलों से गंगा जी का उगम स्थान है, इसलिए इसका मिठास बढ़ गया है। और आखिरी जो अलंकार है उसको अनुमान कहते हैं, क्योंकि आपने बताया है कि गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से आया है, उगा है, तो ये अनुमान का अलंकार है। तो ये पांच प्रकार के दोष और पांच प्रकार के अलंकार आपके इस श्लोक में हुए। और वैसे तो आपके हर एक श्लोक में कोई ना कोई दोष है, अलंकार है। तो जब ये सुना, केशव कश्मीरी ने स्तब्ध रह गए, केवल मुंह खोलकर देखते रह गए। अपने मन ही मन में उनके मन ऐसे घूम रहा था, क्या जवाब दूं इसको। उनकी बुद्धि बिल्कुल स्तब्ध हो गई। वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि ऐसे लगा उनको जैसे उनकी बुद्धि कोई दूर जगह भाग के चली गई, कोई जवाब उनके पास नहीं। मन ही मन में सोच रहे थे कि ये सरस्वती देवी के प्रति मैंने क्या अपराध किया होगा कि आज मुझे ये दिन देखना पड़ा कि एक बालक के सामने मेरा इतना अपमान हुआ और मैं इस तरह से हार गया कि मेरे शब्द से कोई मुंह भी नहीं, मेरे मुंह से कोई शब्द भी नहीं निकल रहा है। जिस तरह से हिरण्यकश्यप का शब्द के मुंह से नहीं शब्द निकल रहे थे उस नाटक के दौरान क्रोध के मारे, लेकिन केशव कश्मीरी के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे क्योंकि उनकी बुद्धि बिल्कुल स्तब्ध हो गई। और निमाय पंडित ने उनसे आगे कहा कि ठीक है, ये श्लोक की बात दूर है, कोई दूसरा श्लोक बताइए, उसका विश्लेषण करते हैं। तो कोई भी श्लोक का एक शब्द भी उनके मुंह में नहीं आ रहा था, केवल मुंह खोल के आ करके देख रहे थे निमाय पंडित की ओर। और उस समय निमाय पंडित ने उनको सांत्वना देने का प्रयास किया और कहने लगे, कोई बात नहीं, वैसे देखा जाए तो जयदेव गोस्वामी, भवभूति, कालिदास जैसे महान महान कवियों के रचनाओं में भी कितने सारे दोष हैं, लेकिन ऐसे दोषों को कोई ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। हम ये समझना चाहिए कि ये कितने बड़े कवि हैं, इनकी काव्य शक्ति कितनी अद्भुत है, कितनी सुंदर सुंदर कविताओं के श्लोकों की रचना करते हैं, हम ये सोचना चाहिए। उसी तरह से आप जैसा कवि सारे पृथ्वी भर में नहीं है, इसलिए आपका गुणगान करना चाहिए। इस तरह से आप बुरा मत मानिए, तो हमने अगर किया हो तो आप गुस्सा मत कीजिए इसके ऊपर। और कल आप सुबह आइए, अभी आप थके हुए होंगे, आप घर में लौटिए, अच्छी तरह से किताबों को पढ़िए और फिर कल आकर हम फिर से चर्चा करेंगे। तो केशव कश्मीरी सर झुकाकर वहां से चले गए और मन ही मन में सोच रहे थे, आज एक बालक के हाथ में मेरा इस तरह से पराजय हुआ, ये सरस्वती देवी मैंने ये क्यों आपने किया मेरे साथ, आपका वरदान जो है झूठा खड़ा हो गया आज, या क्या ऐसा हुआ कि मैंने आपके चरण कमलों के प्रति कोई अपराध किया। तो अपने घर में जाकर केशव कश्मीरी सरस्वती देवी के मंत्रों का उच्चारण करने लगे, बहुत जाप किया सरस्वती के नाम का, और फिर नींद आ गई, सो गए। सपने में सरस्वती देवी आई और कहने लगी, हे पंडित, ये जान लो कि तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारा पराजय जिसके हाथों में हुआ है वो कोई साधारण या असाधारण पंडित भी नहीं है, वो मेरे आराध्य प्राणेश्वर श्री हरि हैं, श्री कृष्ण हैं वो, नहीं तो तुम्हें कौन हरा सकता है, मैं तो उनकी पत्नी के समान हूं, इसलिए उनकी सेवा में हमेशा रहती हूं, तुम मेरे उपासक हो और तुम्हारे उपासना से मैं बंधी हुई हूं, इसलिए मैं तुम्हें यह ज्ञान दे रही हूं। तुम निमाय पंडित के सामने जाना, उनका शरण ग्रहण करो और उनसे ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन ये रहस्य किसी को मत बताना कि वो कौन है, कि निमाय पंडित स्वयं भगवान है। अगर ऐसा करोगे तो बहुत जल्दी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और ये जान लेना कि वे वही भगवान हैं जो कि पूर्व काल में मत्स्य रूप में आए थे, जो कि नरसिंह रूप में आकर जिन्होंने प्रहलाद को बचाया, वही वो आराध्य देव हैं हमारे। और ये जान लो कि जो तुम्हारे विद्या का सही फल है वो दिग्विजय प्राप्त करने का, पदवी प्राप्त करने का नहीं है। अभी तुम्हें तुम्हारे विद्या का सही फल प्राप्त हुआ कि तुम्हें भगवान का आश्रय प्राप्त हुआ, इसलिए तुम जाओ निमाय पंडित के शरण ग्रहण करो। तो जब जागे सुबह को केशव काश्मीरी, तो जल्दी से निमाय पंडित के पास में गए, दंडवत प्रणाम करके उनके चरण कमलों को अपने सर से स्पर्श करा दिया और कह दिया कि मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचाना नहीं। तो निमाय पंडित कहने लगे, अरे पंडित जी आप क्या कर रहे हैं, कहां आप दिग्विजय पंडित और कहां मैं छोटा बालक निमाय इस छोटे से शहर का, आपको ये शोभा नहीं देता। तो केशव काश्मीरी कहने लगे, अब मैं आपको अच्छी तरह से पहचान गया, आप स्वयं श्री भगवान कृष्ण हैं और सरस्वती देवी ने स्वयं मेरे सपने में आकर मुझे ये ज्ञान दिया है, इसलिए कृपा करके मुझे ये संसार से परे कर दीजिए, मुझे आपके शरण में स्वीकार कर लीजिए। तो उस समय निमाय पंडित ने कहा कि हे केशव काश्मीरी, तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें जीवन की सफलता प्राप्त हो गई। जान लो कि ज्ञान की परिपूर्णता इसमें है कि तुम्हें श्री कृष्ण का शरण मिले। ज्ञान का उद्देश्य ही यही है, ज्ञान प्राप्त करने का और कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए कभी भी कृष्ण के शरण को छोड़ना नहीं। अभी कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण के नाम का उच्चारण करो और उस तरह से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। केशव कश्मीरी ने का फिर आलिंगन किया चैतन्य महाप्रभु ने, निमाय पंडित ने, और उस समय जो भी भ्रांति, जो भी घमंड केशव कश्मीरी के हृदय में था वो नष्ट हो गया। और केशव कश्मीरी सोचने लगे कि निमाय पंडित ये स्वयं भगवान, इन्होंने मुझे इतनी निपुणता से हरा दिया कि मेरे गौरव को बनाए रखा लेकिन मेरे घमंड का चूर कर दिया। अगर सबके सामने मुझे हरा दिया होता तो मेरी क्या अवस्था हो जाती थी। कितने है कृपालु हैं ये भगवान कि इस तरह से उन्होंने मेरे घमंड का हरण कर लिया है, अज्ञान का हरण कर लिया है। और आगे चल के केशव कश्मीरी जो हैं, वो एक वैष्णव सन्यासी बने, निम्बार्क संप्रदाय में उन्होंने दीक्षा ली और आगे निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य बने। निम्बार्क संप्रदाय भी यह वैष्णव संप्रदायों के चार संप्रदायों में से एक माना जाता है। और इस तरह से वहां से केशव काश्मीरी भगवान की कृपा को प्राप्त करके चल पड़े। इस तरह से निमाय पंडित ने जब केशव काश्मीरी को हरा दिया तो बात बहुत ही जल्दी सारे नवद्वीप पर पहुंच गई और सभी लोग वाहवाकार कहने लगे कि अरे तुमने सुना, निमाय पंडित ने दिग्विजय केशव काश्मीरी को हरा दिया है। तो निमाय पंडित का गुणगान सारे नवद्वीप में होने लगा और सारे विद्वान कहने लगे कि हमें निमाय पंडित को बहुत ऊंची पदवी देनी चाहिए। इस तरह से निमाय पंडित का गुणगान सब जगह होता रहा। निमाय पंडित तो साक्षात भगवान है तो उनको क्या कठिनाई है, और सरस्वती देवी को क्या कठिनाई है किसी को दिग्विजय बनाना। जब सरस्वती देवी के कृपा दृष्टि मात्र से किसी व्यक्ति को भक्ति प्राप्त हो सकती है, तो किसी व्यक्ति को ये अविद्या का ज्ञान देना, ये संसार का ज्ञान का में निपुण बनाना कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। तो इस तरह से केशव काश्मीरी इनका उद्धार हो गया। तो हमें इस लीला से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, लेकिन दो महत्वपूर्ण बातें ये हैं। पहली बात कि कभी भी हमें हृदय में घमंड नहीं रखना चाहिए। अगर हमें लगता हो कि हमारे अंदर कोई ऐसे गुण हैं जो प्रशंसनीय हैं, तो हमें अपने आप को चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का स्मरण करना चाहिए। त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मान देन कीर्तनीय सदाहरि। कि तृण सभी समान ज्यादा हमें नम्र रहना चाहिए, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील रहना चाहिए। प्रतिष्ठा की अभिलाषा कभी भी नहीं करनी चाहिए और दूसरों को सम्मान देने के लिए हमेशा आतुर रहना चाहिए। ऐसे अवस्था में ही हम भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन सदा कर पाएंगे। दूसरी बात हम ये सीख सकते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र उद्देश्य है कि हम भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करें, क्योंकि विद्या या सरस्वती देवी हरि नाम की पत्नी है। इसलिए अगर हम भागवत ही पढ़ते हैं, कथा भी सुनते हैं, फिर भी ये सब हमें हरि नाम की ओर रुचि ले जाना चाहिए, हरि नाम में रुचि लेनी चाहिए। इसलिए हमें सब हृदय से, भक्ति भाव से, निस्सहाय भाव से भगवान के पवित्र नामों को पुकारना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।
बहुत सारे जो लोग होते हैं या पाठशाला में ऐसे सरस्वती देवी की उपासना करते हैं या पूजा करते हैं, तो उनको सरस्वती देवी का फायदा होता है क्या आध्यात्मिक?
अगर कोई विद्यार्थी भौतिक दृष्टि से सरस्वती देवी की उपासना करे कि केवल मुझे गणित में, भूगोल में, इतिहास में अच्छे नंबर आने चाहिए, तो सरस्वती देवी वो इच्छाएं पूरी कर देंगे, लेकिन उनको भक्ति नहीं देंगे। हो सकता है केशव कश्मीरी जैसे उनको दिग्विजय भी बनाए, पंडित, स्वर्ण उनको पुरस्कार भी मिले विश्वविद्यालय में कोई सरस्वती देवी की पूजा करता हो, लेकिन सरस्वती देवी अपनी छाया के रूप उनके उनके सामने लेकर आएंगे। शुद्ध सरस्वती देवी जो हैं, वो केवल भक्तों के सामने आती हैं और भक्तों को हरिनाम और कृष्ण कथा का हृदय में उदय करा देती है। इसलिए हम सब भी विद्यार्थी हैं, कृष्ण भक्ति के विद्यार्थी हैं, तो हमें सरस्वती देवी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे हृदय में कृष्ण नाम का उदय कराइए, कृष्ण प्रेम का उदय कराइए। यही वरदान हमें सरस्वती देवी से मांगना चाहिए, क्योंकि वो विष्णु भक्ति स्वरूपिणी है, मूर्तिमान विष्णु भक्ति की स्वरूप है, आत्मज्ञान के स्वरूप है। ठीक है।